मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 17 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे कल के ही विषय को आगे बढ़ाकर कुछ और बातें करना चाहूंगा। इनफैक्ट कल जो मैं सूरमा फिल्म के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा था तो सच पूछे तो मेरा मन उससे भरा नहीं, मुझे खाली खालीपन का एहसास हो रहा था। और मैं जानता हूं कि मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनने वालों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है तो उसमें प्रेम का तत्व तो आ ही नहीं पाया था कल की चर्चा में। तो मुझे लगा कि नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उस फिल्म का भी और आप जिस उम्र में हैं उसका भी, तो मुझे उस पर तो बात करनी ही चाहिए। लेकिन यदि आप मेरे आज के इस प्रोग्राम को कोई नाम देना चाहेंगे, कोई शीर्षक देना चाहेंगे तो उसमें प्रेम शब्द नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें कि सर आप किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं बताइए तो मैं उस विषय का नाम आपको बताऊंगा, दृढ़ता का स्रोत। दृढ़ता का स्रोत, यहां जो दृढ़ता शब्द है मित्रों उसका मतलब है संकल्प से। हम अपने जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए एक संकल्प लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं। याद रखिए कि वैसे तो हम अपने जीवन में रोजाना कुछ न कुछ फैसले करते रहते हैं, निर्णय लेते ही हैं। आप देखिए कि एक दिन में ही आप कितने निर्णय लेते हैं। लेकिन यहां हम जिस फैसले की बात कर रहे हैं, जिस निर्णय की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो सामान्य तरीके से रोजाना लिया जाने वाला निर्णय नहीं है, रोजाना किया जाने वाला फैसला नहीं है, नहीं दूसरों को सुनाने वाला फैसला है। ये बेसिकली संकल्प है। संकल्प यानी कि हम जीवन में एकाध बार लेते हैं और फिर जब ले लेते हैं तो फिर उस पर डटे रहते हैं, हम आसानी से उससे हटते नहीं हैं। जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी माझी राम पर फिल्म आई थी, है ना। वो माझी राम क्या करता है कि नहीं, ये जो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्वत है, मैं इस पर्वत को धाराशायी करके इसमें से रास्ता निकाल दूंगा। उसने संकल्प लिया और फिर उस संकल्प को पूरा करके दिखाया, जबकि उसका इतना विरोध हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कोई भी विरोध उसे उसके रास्ते से हटा नहीं सका। तो देखिए हमारा संकल्प कितना मजबूत है, या यूं कह लीजिए कि हमने कितनी ईमानदारी के साथ संकल्प लिया है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि आपको उस संकल्प से डिगाने के लिए कितने विरोध की जरूरत है। अगर हम थोड़े से विरोध से, या यूं कह लीजिए कठिनाई ही कह लीजिए आप, यदि आप थोड़े से विरोध और थोड़ी सी कठिनाई से अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, यानी कि अपने संकल्प से विमुख हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका संकल्प उतना मजबूत नहीं है। वो सामान्य सा ही संकल्प है, आप भले ही उसे संकल्प कह दें, लेकिन आपने किसी उत्तेजना के वशीभूत आकर के, जोश में आकर के कोई एक फैसला कर लिया कि नहीं मैं तो ये करूंगा और करके ही रहूंगा। लेकिन जब हम करने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम ऊबने लगते हैं, या जब सच्चाई सामने आती है कि अरे बाप रे, इसको तो करने में इतनी मेहनत की जरूरत है और हमें इतनी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, तब फिर हम इमोशंस के ग्रिप में आने लगते हैं, इमोशंस हमें अपने कब्जे में लेने लगता है और फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि यार अब किसी तरह से इससे मुक्ति मिल जाए। और सच पूछिए दिमाग इस बारे में हमारा बड़ा सच्चा सेवक है, वो समझ जाता है कि ये जनाब क्या चाह रहे हैं और वो धीरे 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 आपको इस तरह के तर्क प्रोवाइड करने लगता है और फिर आप सब छोड़ छाड़ कर अलग हो जाते हैं और फिर कोई दूसरा संकल्प लेते हैं, जिसे सामान्य फैसला ही कह लीजिए। लेकिन दूसरे के साथ क्या होता है, दूसरे के साथ भी यही होता है, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग की एक आदत हो गई है ना, हमारे दिमाग की एक आदत हो गई है कि हम पहले कुछ निर्णय लेते हैं, फिर उस निर्णय को जब लागू करने में लग जाते हैं या पाने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें कठिनाइयां हैं, उसमें तो ये परेशानियां हैं, फिर हमारा मन, जो संकल्पित मन है, वो कमजोर होने लगता है, फिर हम दूसरी चीजों की तलाश करने लगते हैं और जैसे ही किसी दूसरी चीज की झलक मिलती है हम उधर चल देते हैं और इधर इसको पैकअप कर देते हैं, इस दरवाजे पर शटर गिरा देते हैं और हमारी नई यात्रा शुरू हो जाती है। दिमाग की चालबाजी होती है। तो अब सवाल ये है कि हम इस विमुखता के चक्कर में न पड़ें, यानी कि अपने मूल संकल्प से मुंह मोड़कर किसी दूसरे की तरफ न जाएं, तो वो ताकत हमें मिलेगी कहां से, वो दृढ़ता का स्रोत कहां होगा। यानी कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उन्हें सदा नीरा कहा जाता है, जिसमें हमेशा पानी होता है। बरसात में तो सभी नदियों में पानी होता है, लेकिन गंगा ऐसी नदी है आप कह लीजिए हिमालय से निकले वाली सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे पवित्र नदी है, जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो सवाल यह है कि इसमें यह पानी आता कहां से है? बरसात हो नहीं रही है, कहीं पंप से डाला नहीं जा रहा है, आ कहां से रहा है? तो उसका जो स्रोत है वो हिमालय पर्वत है, बर्फ का पर्वत। वो बर्फ हमेशा पिघलती रहती है, गर्मी के दिनों में जब दूसरी जगह पानी का की त्राही त्राही मची रहती है तो गर्मी में तो बर्फ सबसे ज्यादा पिघलती है, और गंगा नदी को पानी मिलता रहता है, यानी कि गंगा नदी कभी सूखती नहीं है। तो सवाल यह है कि हमारा भी यह संकल्प सूखे नहीं, लगातार इसमें पानी हो, यानी कि ऊर्जा हो, तो वो क्या चीज हो सकती है? मित्रों, उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आपको अपने ढंग से उसका चयन करना पड़ेगा। सूरमा फिल्म में क्या है वो? देखिए, सूरमा फिल्म में जो वो स्रोत है जिसे आप हिमालय कह सकते हैं, याद रखिए वह है प्रेम। प्रेम, इसका जो नायक है, इनफैक्ट संदीप बेसिकली कोई हॉकी प्लेयर नहीं बनना चाहता है। हालांकि मेरी ये बात आपके सीधे समझ में नहीं आएगी कि सर कैसे कह रहे हैं कि हॉकी प्लेयर नहीं बनना चाहता है। यस, वो हॉकी प्लेयर नहीं बनना चाहता है, वह तो बेसिकली अपने प्रेम को पाना चाहता है, और चूंकि उस प्रेम को पाने के लिए हॉकी का एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना जरूरी है, वो इसलिए हॉकी खेल रहा है। और देखिए आगे चल करके एक जगह उसने कहा भी है कि मैं तो हॉकी तेरे लिए खेल रहा था, तेरे लिए। तो वो तेरे लिए कौन है? वो प्रेम के लिए है, क्योंकि जिसे वो जिससे प्रेम करता है वो खुद में एक बहुत अच्छी हॉकी की प्लेयर है। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर वो इतनी अच्छी हॉकी की प्लेयर है तो वो सामान्य व्यक्ति से तो प्रेम नहीं करेगी, वो ऐसे ही व्यक्ति को सबसे पहली प्राथमिकता देगी जो स्वयं में हॉकी का खिलाड़ी हो, और केवल हॉकी का ही खिलाड़ी न हो बल्कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए कि वो हॉकी का प्लेयर नहीं बनना चाह रहा है, वो अपने प्यार को चूंकि हॉकी के माध्यम से ही पा सकता है तो वो प्लेयर बनता है, खेलता है। और आप देखिए कि जब वो खेलता है तो कहीं भी विचलित नहीं होता, लगातार वो अडिग रहता है। तो यहां आपको जो प्रेम का स्वरूप दिखाई दे रहा है मित्रों, वो कौन सा स्वरूप है? वो शक्ति रूपा है, यानी कि प्रेम एक शक्ति है। प्रेम एक ऐसा स्रोत है जो लगातार हमारे संकल्प को सींचता रहता है, उसे सूखने नहीं देता, उसे लगातार हरा भरा बनाए रखता है। उसका एक पक्ष है। इसके बाद दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष अब आप देखिए कि उसका जो नायक है उसे गोली लगती है, आपको मालूम है, और वो पैरालाइज हो जाता है, राइट? पैरालाइज हो जाता है। जब ये मिलने जाती है, अब कहना चाहूंगा कि जब उसका प्रेम उससे मिलने जाता है तो वो रोती है, सब कुछ है, और वो समझ जाती है कि यदि मैं इसके पास रहूंगी तो ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको लगेगा कि जो चीज मिलनी थी वो तो मुझे मिल गई, क्योंकि वो जान रही थी कि ये बेसिकली देश के लिए नहीं खेल रहा, ये मेरे लिए खेल रहा है। और चूंकि अब नेशनल टीम में है तो दूसरे तो यही समझेंगे कि ये देश के लिए खेल रहा है। इससे पहले भी वो प्रमाणित, इसका प्रमाण उसको मिल चुका होता है कि कैसे जब वह अपने प्रेम को देख करके हॉकी को मारता है, बॉल को मारता है, तो वो गोल नहीं हो पाता, उसका ध्यान भंग हो जाता है, ये उसे अच्छा नहीं लगता, उसके प्रेम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका मतलब है कि वह उसके ध्यान को भंग कर रही है। यहां बिल्कुल वही बात उसे याद आती है कि यदि मैं इसके साथ रही तो ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अब क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि मैं इसके जीवन से बाहर चली जाऊं। तो वो जीवन से बाहर चली जाती है, वो मिलने नहीं आती है। जब ये अपने घर लौट कर जाता है हॉस्पिटल से तो अपने भाई से कहता है कि उसका पता लगाओ। उसका भाई भी अवॉइड करता रहता है और पता लगता है कि वो गांव छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके कहीं चली गई है। अब इसको फिर जोश आता है, अब आप देखिए कि अब क्या कर रहा है, अब कैसे कन्वर्ट होता है, प्रेम का रूप कैसे कन्वर्ट होता है। अब फिर भी वो चलिए, फिर हॉलैंड में उसका इलाज होता है और अपने संकल्प शक्ति के बल पर वो खड़ा होता है, क्योंकि अब उसे हॉकी 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 दिख रहा है। अब आप देखिए कि पहले जिस हॉकी को वह अपने प्रेम के लिए खेल रहा था, आखिरी आखिरी में देखिए वो क्या कहता है। खुद उसकी प्रेमिका उसे कहती है कि अब बुदबुदा करके कहती, जब स्टेडियम में वो उसे देखती रहती, आखिरी बिल्कुल सीन पर चले जाइए, तो कहती है कि नहीं, अब ये जो हॉकी है ये अब देश के लिए खेल रहा है, यानी कि जो व्यक्तिगत प्रेम था वो राष्ट्र प्रेम में तब्दील हो गया। तो आप देखिए कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा स्रोत है, वो कौन सी ऊर्जा है जो लगातार उसके संकल्प तक पहुंच रही है। तो आप पाएंगे कि प्रेम, चाहे वो व्यक्तिगत शरीरी प्रेम हो, चाहे वह आध्यात्मिक प्रेम हो, चाहे वह ईश्वरीय प्रेम हो, और सीधी सी बात है कि चाहे वह देश के प्रति ही प्रेम क्यों न हो। और जब इस तरह के प्रेम मिलते हैं तो सच पूछे तो अपने प्रोफेशन का प्रेम बन जाता है, हमारे काम का वह प्रेम बन जाता है। और जिस दिन हम अपने काम से प्रेम के स्तर पर जुड़ जाते हैं, हमें भी सच पूछिए, सच मानिए, तो दृढ़ता का वो स्रोत मिल जाता है और फिर हम अपने निर्णय पर अडिग रहने की ताकत हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे कुछ बातें आप सबसे करनी थी, तो अब वक्त हो चला है, आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।